अभिवादन। आज हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 8 पर चर्चा कर रहे हैं, समय और गति का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन।
बिल्कुल, हमारे पास इस चैप्टर से जुड़े कुछ नोट्स हैं और हमारा इरादा है कि इसकी जो मुख्य बातें उन्हें समझें।
हाँ, जैसे कि समय कैसे मापा गया पुराने जमाने में, फिर गति क्या होती है, स्पीड वगैरह,
और ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है, है ना?
हाँ।
चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की।
ठीक है, तो शुरू करते हैं समय से।
बिल्कुल।
पुराने वक्त में लोग कैसे पता लगाते थे कि कितना बज गया?
स्रोत बताते हैं सनडायल्स थी।
हाँ, धूप घड़ियां, जैसे जयपुर के जंतर मंतर का सम्राट यंत्र, बहुत बड़ा है वो।
सही।
सूरज की छाया से पता चलता था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, रात में
या बादल वाले दिन।
हाँ बिल्कुल, ये तो काम नहीं करती थी तब।
तो फिर क्या?
तो फिर आई वाटर क्लॉक्स, मतलब पानी वाली घड़ियां, क्लेप्सिड्रा भी कहते हैं।
अच्छा, इनमें पानी के बहाव से, मतलब एक बर्तन भी दूसरे में पानी गिरने की रफ्तार से समय का अंदाजा लगता था। भारत में घटे का यंत्र था।
हाँ, सुना है, एक कटोरा धीरे धीरे डूबता था पानी में।
बिल्कुल, पर इनकी सटीकता वो पानी के बहाव पर निर्भर करती थी।
हाँ।
अ तापमान बदला तो बहाव भी बदल सकता है।
और वो आवर ग्लासेस भी तो थी, रेत वाली।
हाँ, रेत घड़ियां और कैंडल क्लॉक्स भी, मोमबत्ती जलने की रफ्तार से समय का पता लगाना। सब बड़े दिलचस्प जुगाड़ थे, पर सटीकता की कमी थी।
यहीं पर शायद सिंपल पेंडुलम का रोल आता है।
बिल्कुल सही, सिंपल पेंडुलम, ये बस एक धागे से लटका हुआ कोई भारी सी गेंद, मतलब बॉब।
हाँ हाँ।
जो आगे पीछे झूलता है, एक पूरा झूला, मतलब एक तरफ जाके वापस आने तक, उसे कहते हैं एक ऑसिलेशन।
और सबसे कमाल की बात, स्रोत कहते हैं कि एक तय लंबाई के पेंडुलम का टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय,
वो लगभग स्थिर रहता है।
हाँ, ये बड़ी बात थी, है ना? और ये पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके बॉब के वजन पर नहीं, कम से कम छोटे झूलों के लिए।
सही कहा, और यही खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी से पहली बार समय मापने का एक ऐसा तरीका मिला जो बाहरी चीजों पर कम निर्भर था।
अच्छा।
इसी सिद्धांत ने सटीक पेंडुलम क्लॉक्स को संभव बनाया, मतलब वैज्ञानिक प्रयोगों में सटीकता बढ़ गई।
और आज तो खैर बहुत आगे बढ़ गए हम।
हाँ, बहुत ज्यादा। आज हमारे पास क्वार्ट्ज क्लॉक्स हैं, हमारी घड़ियों में जो होती हैं।
वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन पर चलती हैं ना?
बिल्कुल, उसके नियमित कंपन वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करती हैं। और फिर है एटॉमिक क्लॉक्स।
ओहो, एटॉमिक क्लॉक्स, ये तो बहुत ही सटीक होती होंगी।
अविश्वसनीय रूप से सटीक। ये परमाणुओं, जैसे सीजियम परमाणु के बेहद स्थिर कंपन पर आधारित है। इतनी सटीक कि इन्हीं से समय की SI यूनिट यानी सेकेंड S परिभाषित होती है।
सोचिए, मतलब GPS जैसी चीजें इन्हीं की वजह से काम कर पाती हैं।
हाँ, GPS को तो नैनो सेकेंड तक की सटीकता चाहिए, वो एटॉमिक क्लॉक से ही मिलती है। खैर, मिनट और घंटा तो हम रोज इस्तेमाल करते ही हैं।
तो समय को इतनी सटीकता से मापना, इसने गति को समझने में भी मदद की होगी।
बिल्कुल, चलिए अब गति यानी मोशन की बात करते हैं। कोई चीज धीमी है या तेज,
ये उसकी स्पीड पर निर्भर करता है।
हाँ, स्पीड का मतलब है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से दूरी तय कर रही है। इसका सूत्र है, स्पीड इज इक्वल टू तय की गई कुल दूरी लिया गया कुल समय।
दूरी बटा समय, ठीक है।
इसकी SI यूनिट है मीटर प्रति सेकंड, MS, पर गाड़ियों वगैरह में किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आर ज्यादा इस्तेमाल होता है।
और इसी सूत्र से हम दूरी या समय भी निकाल सकते हैं।
हाँ, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम और समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
और गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर होता है वो उसी पल की रफ्तार बताता है।
हाँ, तत्कालिक गति। और ऑडियोमीटर कुल तय की गई दूरी दिखाता है।
अच्छा,
अब अगर गति सीधी रेखा में हो तो वो दो तरह की हो सकती है। एक तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन,
मतलब एक जैसी रफ्तार से।
हाँ, जब कोई चीज बराबर समय में बराबर दूरी तय करे, स्थिर गति। और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन,
यानी बदलती हुई रफ्तार।
बिल्कुल, जब बराबर समय में अलग अलग दूरी तय हो। असल जिंदगी में ज्यादातर गति नॉन यूनिफॉर्म ही होती है ना, गाड़ी चलाना, दौड़ना।
हाँ, वो तो है, कभी तेज कभी धीरे।
यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर।
अच्छा, वो क्या है?
स्पीड तो बस ये बताती है कि कितनी तेज। वेलोसिटी में गति के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन भी शामिल होती है।
ओह, अच्छा, मतलब अगर दिशा बदल जाए तो वेलोसिटी बदल जाएगी, भले ही स्पीड उतनी ही रहे।
एकदम सही। सोचिए एक कार गोल चक्कर पे एक ही स्पीड से मुड़ रही है। स्पीड स्थिर है पर क्योंकि दिशा लगातार बदल रही है उसकी वेलोसिटी बदल रही है।
ये तो जरूरी बात है।
हाँ, भौतिकी में बल और गति के बदलाव समझने के लिए ये अंतर जानना बहुत जरूरी है।
और ये सब बातें सिर्फ साइंस की किताबों के लिए नहीं है, सोचिए खेलों में।
हाँ, मिली सेकंड से हार जीत तय होती है।
और मेडिकल में ईसीजी मशीन है, वो दिल की धड़कन मिली सेकंड में नापती है। जीपीएस का तो हमने जिक्र किया ही।
बिल्कुल। और एक मजेदार बात ये भी है कि हम जो अभी यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, हम स्थिर नहीं है।
क्या मतलब?
अरे, पृथ्वी घूम रही है भूमध्य रेखा पर करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सूरज का चक्कर भी लगा रही है लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
बाप रे, मतलब हम सब लगातार भयंकर स्पीड से गति में हैं।
हाँ, हम सब गति में हैं। तो हमने देखा कि कैसे समय मापने के तरीके वो पुरानी धूप घड़ियों से लेकर आज की एटॉमिक क्लॉक्स तक पहुंचे,
और कैसे गति को समझने के लिए स्पीड, दूरी, समय और वेलोसिटी के रिश्तों को समझना जरूरी है।
बिल्कुल, ये सिर्फ सूत्र नहीं है, ये हमारी दुनिया को समझने का एक तरीका है।
सही कहा, ये अवधारणाएं हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया देती हैं। अच्छा, अब एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं।
हाँ,
हमने समय और गति मापना सीखा, पर क्या कभी ये सोचा है कि अगर हम प्रकाश की गति के करीब, मतलब बहुत ही तेज रफ्तार से सफर कर पाते, तो क्या हमारे लिए समय धीमा हो जाता, जैसा आइंस्टीन की थ्योरीज में कहा गया है?
सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, ये सोचने वाली बात है।
हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।